भागवत सार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय पर चर्चा है। कृपया इसके श्लोक को दोहराइए। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंत कोविद नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी विवभवं प्रभु पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंगित कोविद नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभु पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिं मितिंग कोविद नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभु। पतिव्रता पतिम अपने पति की इंगित कोविदा मनोभावों को जानने वाली नित्यम निरंतर पर्यचर सेवा की प्रीत्या प्रेम पूर्वक भवानी देवी पार्वती इव समान भवम शिवजी की प्रभुम अपने स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती हैं। तात्पर्य, भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव जी की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अथवा पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षुक की तरह प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन शिवजी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिनके पास घर तक न था और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुणी के समान शिवजी की सेवा किया करती थीं। इसी प्रकार देवहूति सम्राट स्वयंभू मनु की कन्या थी, तो भी उसने कर्दम मुनि को अपने पति के रूप में वरण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना जानती थीं। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पति परायणा, पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के सदृश श्रेष्ठ तथा पतिव्रता होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव जी ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु या शिवजी आदर्श वैष्णव हैं। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम हरे हरे मंत्र का जाप करते हैं। शिवजी का एक वैष्णव संप्रदाय है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाहित कन्याएं शिवजी की पूजा इसलिए करती हैं, जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिवजी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बटाती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे और फिर इस अध्याय पर चर्चा करेंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूष
सर्व वेदैक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या सर्व लोकैक दृक् प्रदा सर्व भागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कली भांतो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाई अति नीचो चतह कर हान मुंच कदाचिन्मा प्रेम नारद कंठयो स्फुरा पिछले दो अध्यायों से गृहस्थ जीवन की चर्चा हो रही है, कैसे देवहूति और कर्दमुनि के उदाहरण से हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, क्या योग्यताएं हैं। ये हमने दो अध्याय पहले चर्चा की कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले क्या तैयारी एक व्यक्ति को करनी चाहिए, और फिर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे विवाह के विषय में कि कैसे समाज के नियम जो बने हैं सारे वर्णाश्रम या अन्य वर्णों के लिए वो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए हैं। तो कल चर्चा हुई कर्दम मुनि और माता देवहूति के विवाह की कि किस प्रकार विवाह होना चाहिए, कैसे, कुछ योग्यताओं का वर्णन, लक्षणों का वर्णन किया। जब मनु महाराज ने बताया कि क्यों कर्दम मुनि को उनकी पुत्री को स्वीकारना चाहिए और फिर कर्दम मुनि ने भी कुछ लक्षण दिए, तो विवाह कल हुआ हमने सुना, और फिर कैसे मनु महाराज चले गए अपनी पुत्री को कर्दम मुनि को सौंप कर। तो अब आगे कल हमने मनु महाराज के विषय में भी उनके राज्य के विषय में सुना। तो जब अब मनु महाराज चले गए तो माता देवहूति ने कैसे कर्दम मुनि की सेवा की, इसका वर्णन प्रारंभ किया गया है पहले कुछ श्लोकों में, दो तीन श्लोकों में, और उसके बाद आगे के श्लोकों में वर्णन है कि कैसे बहुत प्रसन्न हो गए कर्दम मुनि माता देवहूति की सेवा से। तो पहले आठ श्लोक इन दोनों विषयों का वर्णन करते हैं। माता देवहूति ने बहुत हृदय से कर्दम मुनि की सेवा की। जैसे श्लोक में हम लोग सुन रहे हैं कि माता पिता के चले जाने पर उसने बहुत अच्छी तरह से सेवा की। आगे के श्लोकों में वर्णन है कि उन्होंने बहुत प्रेम से और बड़े आदर से अपने पति की सेवा की। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक पत्नी को अपने पति की सेवा एक बहुत निकट के मित्र की तरह करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कभी निकटता होने के कारण आदर को त्यागना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत निकटता हो जाती है तो व्यक्ति आदर को त्याग देता है, आदर नहीं करता है। ये भक्तों में भी हो जाता है। कभी कभी हम किसी वरिष्ठ भक्त के साथ बहुत ज्यादा निकट रहते हैं तो हम उसका आदर नहीं करते ये सोचकर, क्योंकि रोज हम उससे मिलते हैं, रोज बातें करते हैं, तो बहुत ज्यादा निकटता से आदर चला जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। जब हम बहुत ज्यादा निकट हो जाते हैं तो अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छल से या गलत भाव से एक शुद्ध भक्त का संग भी करता है तो हो सकता है वो उसके लिए पतन का मार्ग हो। क्यों? क्योंकि अगर वो उनके साथ रहकर अपराध कर रहा है, उनको एक साधारण व्यक्ति मान रहा है, तो फिर ये अपराध के कारण उसका पतन हो जाएगा भक्ति में। इसीलिए बड़ा संभालना चाहिए। जब साथ में रहते हैं तो आदर के भाव को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं कि विश्रम्भेण और गौरवेण। विश्रम्भेण अर्थात बहुत निकट का संबंध, बहुत निकट के मित्र की तरह माता देवहूति ने करदम मुनि की सेवा की, लेकिन गौरवेण आदर को नहीं भूली। वो ये कभी नहीं भूली कि वे मेरे पति हैं, उनकी क्या स्थिति है, आध्यात्मिक स्तर पर कितने आगे बढ़े हुए हैं, तपस्या में, भगवान की कृपा में वे सब में आगे हैं। इन चीजों को कभी भूली नहीं माता देवहूति। इसलिए गौरवेण शब्द इस्तेमाल किया गया है। गौरवेण अर्थात सदैव आदर बनाया रखा। तो हम सबके लिए ये एक उदाहरण है कि जब हम वरिष्ठों के साथ संग करें, गुरु के साथ संग करें, हो सकता है कि हमारी सेवा ऐसी हो जहां हमें बहुत निकट का संबंध हो, लेकिन कभी भी गौरवेण आदर को नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि आदर को त्याग दिया ये मानकर कि ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग कभी किसी बहुत वरिष्ठ भक्त के साथ हैं जिन्होंने कई वर्ष, जैसे करदम मुनि कई वर्ष तपस्या कर चुके हैं और माता देवहूति अभी अभी उनके साथ आई हैं, लेकिन बहुत निकट की सेवा कर रही हैं, तो हो सकता था कि आदर को भूल जाती। तो इसी तरह बड़ा आवश्यक है एक शिष्य के लिए कि वो कभी भी गुरु के प्रति आदर को नहीं त्यागे, भले ही कितना ही निकट का संबंध क्यों ना हो जाए, गुरु उससे मित्रता का भाव ही क्यों ना प्रकट करें, लेकिन फिर भी एक शिष्य को गुरु के प्रति आदर को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो जब हम लोग भक्ति में रहते हैं, आपस में रहते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने वरिष्ठों से, अपने गुरु से, अपने गुरु समान लोगों से हम सदैव आदर का भाव बनाए रखें, बहुत निकट ना हो जाएं जिससे अपराध हो जाएं। तो इस प्रकार माता देवहूति ने बहुत अच्छी सेवा उन्होंने की। और फिर किस प्रकार में सेवा की? अभिमान शून्य होकर। कोई अभिमान नहीं था उन्हें अपने बहुत बड़े राजा पिता का, क्योंकि उनके पिता तो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जब उन्होंने सेवा की, जैसे प्रभुपाद यहां भी उदाहरण दे रहे हैं भवानी माता पार्वती का, वो भी एक बड़े राजा की पुत्री थी, लेकिन जब शिव जी की सेवा करने गई तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही माता देवहूति बहुत बड़े महल में पलकर बड़ी हुई, बहुत बड़े राजा की पुत्री थी, ऐश्वर्य में रही, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने धन का मान अपने पति के सामने प्रकट नहीं किया। क्योंकि उनके प्रति पति एक कुटिया में रहते थे, वन में रहते थे, तो वे भी वैसे ही रहीं, उन्होंने वैसा ही भाव स्वीकार किया, उन्होंने कोई ऐश्वर्य को प्रकट नहीं किया। वर्णन आता है कि वो कैसे रहीं, उन्होंने अपने पति के सिद्धांतों को स्वीकार किया। प्रभुपाद लिखते हैं पत्नी के लिए बड़ा आवश्यक है कि वो पति के सिद्धांतों को स्वीकार करे, अर्थात पति अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो पत्नी को भी वही मार्ग अपनाना चाहिए, उन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए अहंकार से। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर पत्नी अपने पिता के ऐश्वर्य का अहंकार करे तो फिर जीवन सुखी नहीं रह सकता, पारिवारिक जीवन। तो माता देवहूति ने अपने आप को पूर्ण रूप से उनकी सेवा में लगा दिया, उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया और उनकी जो कांति थी वो जाती रही और उनके शरीर पर मैल जम गई, अर्थात किसी ने एक बार प्रश्न किया था, क्या वो नहाते नहीं थे? किसी ने ये सुना तो ये प्रश्न आया कि मैल कैसे जम गए। मैल जमने का अर्थ है कि साधारणता बहुत कुछ तेल इत्यादि लगाकर मैल को निकाला जाता है, सुंदर बनने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, तो उस सब को त्याग दिया उन्होंने, कोई अपनी सुंदरता का ध्यान नहीं दिया। हालांकि बहुत सुंदर थी, कल हम लोग सुन रहे थे उनकी सुंदरता क्या थी, देवताओं देवता भी उनको देखकर बेहोश हो जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोई सुंदरता का ध्यान नहीं दिया, केवल पति के कार्यों में मदद करने लगे। और कर्दम मुनि वो अपनी तपस्या में, अपनी भक्ति के कार्यों में मग्न थे, और देवहूति बहुत समय तक केवल उनकी सेवा कर रही थी, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, अपने सौंदर्य का ध्यान नहीं दिया। प्रभु बात कहते पत्नी के लिए आवश्यक है पति के सिद्धांतों में सहयोग करना। अब मान लीजिए माता देवहूति अपने सौंदर्य के, अपने आभूषणों में रोज उतना समय बिताती तो कहां मदद कर पाती कर्दम मुनि को, तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, शरीर भी क्षीण हो गया, बहुत पतली हो गई, और उस समय तक वो अपने पति की बहुत अच्छी तरह सेवा करती रही। तो पति के सिद्धांतों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे गांधारी, महाभारत में वर्णन आता है कि जब गांधारी ने ये सुना कि उसके पति अंधे हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। इसका कारण क्या था? उन्होंने सोचा कि कहीं मुझे अपनी दृष्टि का अभिमान नहीं हो जाए कि मेरे पति देख नहीं सकते हैं लेकिन मैं देख सकती हूं, तो इसीलिए उन्होंने पट्टी बांध ली आंखों पर कि ताकि मैं भी नहीं देखूं। तो दो कारण, पहला अभिमान ना हो अपनी दृष्टि का, और दूसरा जिस प्रकार उनके पति रहते हैं वो भी रह सकें। उनके पति देख नहीं पाते हैं तो उनका क्या भाव होता है, जो व्यक्ति देख नहीं पाता वो कैसे चलता है, कैसे रहता है, क्या सोचता है। तो उसी भाव में, उसी सिद्धांत को पालन करने के लिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तो इस तरह से हमें पालन करना सीखना चाहिए। तो जब कर्दम मुनि ने ये देखा कि किस तरह से देवहूति ने पूर्ण रूप से अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, तो फिर उन्होंने उनसे कहा, एक दिन वो बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आज तुमसे, क्योंकि तुमने अपने सारे अभिमान को त्याग कर, अपने सारे शारीरिक सुविधाओं को त्याग कर, कष्ट लेते हुए, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हुए, और मुझे मेरे आध्यात्मिक प्रगति में मदद की है, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। और क्योंकि मैं आध्यात्मिक कार्यों में लगा था, मुझे भगवान की कृपा से भगवान जो ऐश्वर्य है वो प्राप्त है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य। आध्यात्मिक ऐश्वर्य क्या है? जैसे व्यक्ति को अभय प्रदान करना, ये एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। निर्भय होना, ये एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। बहुत सारा धन होकर, मान सम्मान होकर भी व्यक्ति भय से दूर नहीं जा पाता, तो इसलिए भौतिक आकर्षण या भौतिक ऐश्वर्य ये केवल भय को बढ़ाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऐश्वर्य निर्भय करते हैं। अभय चरणार विंदरे। तो इसीलिए कर्दम मुनि कहने लगे कि भगवान की कृपा से मुझे आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त है, और उसी कृपा को मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, और तुम देखो इन ऐश्वर्यों को अनुभव करो। अर्थात जब पति की सेवा पत्नी करती है तो पति के आध्यात्मिक प्रगति का लाभ स्वतः उसको मिल जाता, उसको कोई और अलग कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए नियम है कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। और इसी तरह एक गुरु और शिष्य का संबंध है। पत्नी के लिए पति गुरु होता है। तो गुरु, जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति में अगर हम गुरु की सेवा करें, तो जो गुरु हैं, जैसे यहां कर्दम मुनि अपने भक्ति के ऐश्वर्यों को जो कृपा से, भगवान की कृपा से मिले हैं, देवहूति के साथ वो उसको बांट रहे हैं, इसी तरह अगर हम वरिष्ठ भक्तों की गुरु की सेवा करते हैं। एक शिष्य अगर गुरु की सेवा करता है तो फिर गुरु के जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं वो गुरु शिष्य के साथ बांट लेते हैं। दूसरे शब्दों में, देवहूति के लिए संभव नहीं था भगवान की उस कृपा को स्वीकार करना या ग्रहण करना जो कर्दम मुनि के कई वर्षों की तपस्या का, भगवान की कृपा का फल था। संभव नहीं था, लेकिन केवल उसने कर्दम मुनि की सेवा की, इसीलिए वो सारे ऐश्वर्य, वो सारी कृपा, वो सारे आध्यात्मिक गुण उसमें भी आ गए। इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे लिए मार्ग है गुरु की सेवा। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं समर्पित भाव में, जैसे माता देवहूति ने की, तो उस भाव में सेवा करने से स्वाभाविकता जो गुरु के, भक्तों के जो गुण हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक गुण भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं या फिर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रदान किए हैं, वो गुण वे आपको प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति का मार्ग है महाजनो येन गतः स पंथा। पंथ मार्ग क्या है? जो महाजन कहें उसको करना, उनकी सेवा करना। भक्तों की सेवा ये भगवान की सेवा से श्रेष्ठ मानी गई है। शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशां विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम सम अर्चनम। विष्णु की आराधना बाकी सारी आराधनाओं में परम है। आराधना नाम सर्वेशां, बहुत सी आराधनाएं हो सकती हैं। पार्वती देवी को कहते हैं कि हे देवी, बहुत सी आराधनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसमें परम आराधना है विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी। लेकिन ये जान लो उससे भी परे एक और आराधना है तदिया नाम। तदिया अर्थात वो सारी चीजें, वो सारे व्यक्ति जो कृष्ण से, विष्णु से संबंधित हैं। तदिया नाम, जैसे हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, तदिया नाम सम अर्चनम, उनकी आराधना उनसे भी, विष्णु से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्या भक्त विष्णु से बड़े हैं? क्या भक्त कृष्ण से बड़े हैं? नहीं। उनकी आराधना विष्णु से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण को प्रिय हैं, और कृष्ण देखते हैं कि जब मेरे भक्त की पूजा की जा रही है तब वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने वरिष्ठों की, अपने गुरु की या गुरु समान व्यक्तियों की हम सेवा करते हैं तो उनकी सेवा से वो सारे लाभ जो उन्हें प्राप्त हुए हैं हमें हो जाते हैं। इसका उदाहरण नारद मुनि। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, कोई तपस्या नहीं की थी उन्होंने उस समय, छोटे से बालक थे, लेकिन जब उन्होंने भक्तों की सेवा की, चार महीने चतुर्मास के समय उन्होंने भक्ति वेदांतियों की सेवा की, और ऐसी सेवा से उन्होंने अपनी कृपा उन्हें प्रदान की नारद मुनि को, जिससे नारद मुनि का भय चला गया, सारी आसक्ति चली गई। उनकी माता की मृत्यु हुई, नारद मुनि दुखी नहीं हुए, भगवान की कृपा मानी कि अच्छा था मेरी एक आसक्ति थी मां में, वो भी भगवान ने निकाल दी, और निर्भय होकर जंगलों से, वनों से, गांवों से, अन्य स्थानों से, पर्वतों से होते हुए अकेले भगवान की पूजा करने लगे, भगवान की आराधना, भगवान की तपस्या करने लगे। तो ये उन भक्ति वेदांतियों की कृपा थी जो केवल चार महीने नारद मुनि के घर रहे, जहां नारद मुनि ने उनकी सेवा की एक छोटे बालक के रूप में। तो ये उदाहरण है कि कैसे सेवा के द्वारा, भक्तों की, गुरु की सेवा के द्वारा हमारे हृदय में कृष्ण की कृपा आ जाती है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति रुचि और आसक्ति जागृत होती है। आज हमें भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं है, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा श्रवण में रुचि नहीं है, इसलिए कथा होती रहती है हम लोग जाते नहीं हैं, और चले भी जाते हैं तो केवल इसलिए कि कथा में नींद अच्छी आती है ना। बड़ी अच्छी नींद आती है, आंखें खुलती ही नहीं है, बाकी तो सोने का प्रयास करें लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन जब कथा शुरू होती है भगवान की, इतनी मधुर है कि बस आंखें बंद हो जाती है। तो रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है कृष्ण में, कृष्ण के नाम में। लेकिन जैसे नारद मुनि को प्राप्त हुई केवल सेवा से, क्या किया उन्होंने, बस थोड़ी सेवा। जब वो प्रसाद लेते, प्रसाद उनकी माँ बनाया करती, नारद मुनि लाकर दे दिया करते। फिर जब वो ले लेते तो उसको हटाते, वहां पर साफ करते, और फिर उनकी अनुमति से थोड़ा सा जो उच्छिष्ट बचा होता उसको ग्रहण कर लेते। ये बड़े बल है भक्ति में। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष, तीन महाबल चैतन्य चरितमृत में कहा गया है। तीन महाबल हैं भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की धूलि। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे महाराज रहुगण को भरत, जड़ भरत बताते हैं कि जब तक भक्तों की चरण धूलि से अभिषेक नहीं किया जाता, महत्पाद रजोभिषेकम, तब तक व्यक्ति स्पर्श भी नहीं कर पाता आध्यात्मिक पथ को। तो भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्तों के पद को धोया हुआ जल। आज भी ये नियम है भारत में कई स्थानों पर, और ये वैदिक सभ्यता थी कि जब कोई भक्त घर पर आते थे तो उनके पहले चरणों को धोया जाता था। आज भी आप लोग देखते हैं कई जगह पर आप जाएं तो बाहर थोड़ा जल रखा होता है। तो ये नियम था, स्वयं श्री कृष्ण ने पालन किया। जब सुदामा आए तो श्री कृष्ण ने उनको उनको बिठाया, बड़ा अच्छा स्थान दिया और उनके चरणों को धोया। ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया, इतने प्रसन्न हो गए श्री कृष्ण सुदामा को देखकर। और इतना ही नहीं, जब महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मण आए, भक्त आए, तो स्वयं श्री कृष्ण ने उनके चरणों को धोया। तो स्थापित करने के लिए कि ये नियम है, क्योंकि भक्तों के पद को धोया हुआ जल अगर अपने सर पर धारण किया जाए या उसका पान किया जाए तो भक्ति का एक बल है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष। और भक्तों ने जो प्रसाद ग्रहण किया है, जैसे जो प्रसाद होता है उसकी तीन श्रेणियां कह सकते हैं। पहला जो प्रसाद, अर्थात वो प्रसाद जो बनाया जाता, भगवान को भोग जब चढ़ाया जाता है तो जो भगवान को हम भोग एक थाली में लगाते हैं, तो जिस थाली में भगवान को भोग लगाते हैं उसको महाप्रसाद कहते हैं। हमने देखा है कि कई जगहों पर ये महाप्रसाद लिखने की आदत है, महाप्रसाद है, महाप्रसाद है। तो यहाँ लोग महाप्रसाद सोचते हैं कि जब पूरा प्रसाद है तो महाप्रसाद है, प्रसाद मतलब वो थोड़ा सा जो हाथ में दिया जाता है उसको प्रसाद कहते हैं। ये लोगों की समझ है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हाथ में आप थोड़ा शीरा वगैरह देते हो, थोड़ा सा खीर देते हो, ये प्रसाद है। और महाप्रसाद मतलब सब बड़ा, दाल चावल सब होना चाहिए। लेकिन सही समझ आचार्यों के द्वारा ये दी गई है कि प्रसाद मतलब जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उस भोग में से थोड़ा सा हम लोग भगवान के लिए थाली में रखकर भगवान को अर्पण करते हैं, तो जो भगवान की थाली में से आता है वो महाप्रसाद कहलाता है, और बाकी सारा प्रसाद हो जाता है, जो बाकी बचा हुआ है तो वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में सब कुछ महाप्रसाद है, क्योंकि सब कुछ भगवान को अर्पण किया जाता है, जैसे बनता है वही पूरे के पूरे मटके लाकर। वैसे जगन्नाथ जी यहाँ पर भी हैं, तो अगर हम लोग भी आगे चलकर मिट्टी के मटकों में बनाना प्रारंभ करें तो फिर हो सकता है आगे सीधे सारे मटके लाकर दें, तो सब कुछ फिर सारा महाप्रसाद होगा। तो इससे प्रसाद और महाप्रसाद। और तीसरी श्रेणी है, उस महाप्रसाद को जब भक्त ग्रहण करते हैं तो उनका जो उच्चिष्ट बचा हुआ है वो महा महाप्रसाद है, बड़ी शक्ति है उसमें, क्योंकि वो भक्तों का। जैसे भागवत, भागवत क्या है, भागवत में शक्ति तो है ही, लेकिन जब शुक मुखार जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलता है तो और मीठा हो जाता है। ऐसा वर्णन भागवत के पहले श्लोकों में किया गया है कि जैसे भागवत तो है ही मीठा, ये बड़ा अच्छा फल है, पका हुआ फल है, लेकिन जब वही फल सुखदेव गोस्वामी चख कर देते हैं तो फिर और मीठा हो जाता है। शुक मुखाद अमृतम, वो अमृत हो जाता है। तो इसीलिए तीन बल हैं भक्ति में। तो ऐसे भक्तों की सेवा से, जैसे हम नारद मुनि के उदाहरण से देखते हैं, उन्होंने उच्छिष्ट लिया और कैसे उनको भक्ति प्रदान हुई, तो इस तरह से देवहूति एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि हमें किस तरह अपने गुरु या भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए इस भाव में। और तब जैसे कर्दम मुनि ने अब कहा कि ठीक है, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, देखो इन ऐश्वर्यों को, अनुभव करो इन ऐश्वर्यों को, तो भक्ति के वो ऐश्वर्य या भक्ति के वो गुण फिर वो शिष्यों में प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार कर्दम मुनि ने अपने जो ऐश्वर्य थे उनको प्रदान किया। और फिर कर्दम मुनि कहने लगे कि इस भौतिक जगत में किसी और आनंद का क्या लाभ है अगर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई आनंद की लाभ की आनंद की आवश्यकता नहीं है और उसका कोई लाभ नहीं है अगर हम ऐसे आनंद को लें। तो ऐसे उन्होंने जब कह दिया तो उसके बाद माता देवहूति ने देखा और उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने कहा कि उनकी शक्ति को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन माता देवहूति ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया है लेकिन निर्भयता प्रदान कीजिए। और निर्भयता कैसे होगी ये आगे वो वर्णन करती हैं। तो वो कहती हैं कि आपने वचन दिया था मेरे पिता को कि आप मुझे संतान प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि आपको याद होगा मनु महाराज से कर्दम मुनि ने कहा था कि जब संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, ये आप जान लें। तो कर्दम मुनि से कहा था ठीक है कोई बात नहीं। तो अब देवहूति ने याद दिलाया कि आपने वचन दिया था उस वचन को पूरा कीजिए, अब मेरी इच्छा है मैं संतान उत्पत्ति करना चाहती हूं। तो उस समय देवहूति की स्थिति जैसे हमने वर्णन किया बहुत बहुत पतली हो गई थी, शरीर क्षीण कांति चली गई थी, बहुत दुर्बल थी। तो ऐसे समय में उन्होंने कामना की कि मैं ऐसे प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उस समय कर्दम मुनि ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े महल की रचना की अपनी योग शक्ति से। और वो महल ऐसा था जो हवा में उड़ता था, पूरा महल 7 स्टोरी थी उसमें, 7 माले कहते हैं, क्या बोलते हैं, 7 स्टोरी, हाँ मंजिल, हाँ 7 मंजिल। आपके साथ रहकर हमारी हिंदी भी अच्छी हो रही है। तो 7 मंजिल थे उसमें, कोई ऐसे छोटा मोटा महल नहीं बनाया था, और बहुत बड़ा महल और ऐसा जो हवा में उड़ता है। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि इसको कल्पना मत मानिए कि एक महल कैसे हवा में उड़ सकता है, महल तो नहीं उड़ सकता। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान इतने सारे ग्रहों को उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं ना सब ग्रह, ये तो साइंटिस्ट भी विश्वास करते हैं कि ग्रह घूम रहे हैं हवा में, वो तो ये नहीं कहते कि ओके कोई किसी ने पकड़ के रखा है, कह रहे हवा में घूम रहे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे ग्रह जिनमें बहुत सारे महल हैं, राइट, हर ग्रह में बहुत महल है, तो इतने सारे महलों को भगवान हवा में उड़ा रहे हैं, तो फिर भगवान का भक्त एक योगी एक महल को हवा में नहीं उड़ा सकता, आराम से उड़ा सकता। तो वो कह रहे कि तो इस तरह का महल बना और बहुत बड़ा महल, उसमें सब कुछ था, उसमें तालाब थे जिसमें हंस खेल रहे थे और उसके जो खंबे थे वो मोतियों से और मणियों से बने हुए थे। रूपत कहते हैं कृष्ण का भी ऐसे ही महल था, कृष्ण के महल में रात्रि को लाइट लगाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो मणियां थी वो इतना चमकती थी कि बहुत प्रकाश होता था। तो ऐसे उन्होंने महल बनाए और जो फर्श था उसको कोई टाइल्स नहीं लगाई थी ऐसे, उसमें भी रत्न लगे हुए थे बहुत। तो ऐसे बहुत वर्णन किया और बहुत सुंदर था महल और कई उसमें कमरे थे, बगीचे थे, बहुत बड़ा बनाया, इतना बड़ा महल। तो जब उस महल को देवहूति ने देखा तो देवहूति ने देखा उसको अच्छा लगा कि क्या पति ने कितना अच्छा कार्य किया, लेकिन थोड़ी दुखी हो गई, हृदय से दुखी हो गई। तो जब कर्दम मुनि ने देखा तो उनको पता चला कि थोड़ी दुखी हो गई। उनके दुख का कारण क्या था? देवहूति सोच रही थी कि इतना ऐश्वर्यशाली, इतना आलीशान महल है, लेकिन मैं ऐसे प्रवेश करूंगी गंदे कपड़े और एकदम शरीर मैला हो रहा है और एकदम बहुत दुर्बल हूं, तो ऐसे में कैसे अपने पति को प्रसन्न कर सकूंगी। तो कर्दम मुनि ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम पहले बिंदु सरोवर, ये भगवान के द्वारा निर्माण किया गया है, तो आप इसमें पहले स्नान करो जाकर। तो बिंदु सरोवर हमने कल वर्णन किया था, भगवान ने उसका निर्माण किया था। प्रभुपाद लिखते हैं कि आज भी नियम है कि हमें पवित्र स्थानों पर जाकर स्नान करना चाहिए, जैसे यमुना में जब वृंदावन जाते हैं तो यमुना में स्नान करें, या फिर गंगा में इत्यादि ऐसे स्नान करना चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया। देखिए ये सारे, वैसे ये जो पूरा अध्याय है इसको भक्ति के प्रसंग से जोड़ सकते हैं, प्रभुपाद यही कर रहे हैं तात्पर्यों में। तो इसको भक्ति के है कथा देवहूति की और कर्दम मुनि की, लेकिन एक शिष्य और गुरु, एक भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको कैसे आचरण करना चाहिए वरिष्ठों के साथ, और फिर वरिष्ठ कैसे कैसे उसको निर्देश देते हैं। तो कर्दम मुनि ने कहा कि जाओ स्नान करो, और फिर तो आदेश का पालन करके वो प्रवेश कर गई बिंदु सरोवर में। और जैसे ही बिंदु सरोवर में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा नीचे एक बड़ा महल है अंदर भी, और उसमें 1000 दासियां इंतजार कर रही हैं माता देवहूति का। तो अपनी योग शक्ति से उन्होंने, कर्दम मुनि की योग शक्ति देखिए, तो उन्होंने अपने एक महल तैयार किया और नीचे भी जल में उन्होंने दासियों को प्रकट किया। तो फिर उन दासियों ने देवहूति को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, स्नान करवाया, उनके बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, बड़े आभूषण, ये सब उनको किए। तो वैसे ही बना दिया जैसे वो पहले थी, कर्दम मुनि से मिलने के पहले बहुत सुंदर थी और आभूषणों से हमेशा आभूषण रहते थे, बहुत ऐश्वर्यशाली वस्त्र धारण करती थी, तो उन सबको बना दिया। तो ये सब योग शक्ति से प्रकट कर दिया। देखिए इस बात को एक बार सती देवी ने कहा था दक्ष से, जब दक्ष ने कह दिया ये शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, ये तो भिखारी है, घूमता है ऐसे ही, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ऐश्वर्यों की आप तुलना नहीं कर सकते हो, ये जो ऐश्वर्य आपके हैं जो दिख रहे हैं, इससे कहीं अधिक ऐश्वर्य भक्तों के पास होता है। भगवान शिव जी की बात कर रहे थे कि शिव जी के पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, ऐसा मत सोचिए कि दिख नहीं रहा इसीलिए नहीं है। तो कर्दम मुनि हालांकि कुटिया में रह रहे थे, एक कुटिया में साधारण घास फूस की बनी हुई, तो ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी ऐश्वर्य प्रकट करने की। अब देखिए जब उन्होंने ऐश्वर्य प्रकट किया तो कौन व्यक्ति इतना ऐश्वर्य प्रकट कर सकता, इतना बड़ा महल बना दिया जो हवा में, और उनकी इच्छा से कहीं भी जा सकता, ऐसा महल था वो, ऐसे नहीं कि खड़ा हो गया तो बस हिल नहीं सकते, फिर चढ़ना पड़ेगा और फिर कहीं घूम के आए वापस जाए, नहीं, जहां जाना पूरा महल जा रहा है जिसमें सब कुछ है। आप सोचिए कितना आनंद होगा, हम लोग को जाना होता है कहीं पर दूर तो हमें सब घर वर छोड़ कर जाना, प्लेन में चढ़ो इतनी सी जगह होती है, बस उतना ही बैठो, हिल नहीं सकते, और बहुत अनाउंसमेंट होते हैं उसमें, जैसे प्लेन उड़ने लगता है तो अनाउंसमेंट होता है पेटियां बांध लीजिए आप लोग अभी, और हिलना नहीं, उठना नहीं, बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही मजाक कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे ये प्लेन वाले प्लेन में बैठने के बाद पेटी बांधने को क्यों कहते हैं, बांधना मतलब कुर्सी से अपने आप को बांध लेना होता है, तो बांधने को क्यों कहते हैं। तो दूसरे ने कहा कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बचकर भाग नहीं पाए इसीलिए तो इसीलिए बोलते हैं बांध लीजिए, पेटी बांध लीजिए। तो बड़े विचित्र विचित्र अनाउंसमेंट वो लोग करते हैं। और पहले तो डराते हैं, जैसे ही प्लेन शुरू होने वाला होता है, प्लेन चलने लगता है, तो डराते हैं क्या करके कि आपकी सीट के नीचे वो एक ये जैकेट पड़ी है, अगर गलती से प्लेन को पानी में उतरना पड़े तो फिर आपको ये जैकेट पहनकर बाहर निकलना, आदमी घबरा जा रहे प्लेन को पानी में उतरना पड़े, और फिर कहते हैं कि अगर हवा का दबाव कम हो जाएगा तो ऊपर से ऑक्सीजन का ऐसे मास्क आएगा उसको पहन लीजिएगा, कितना डराते हैं पहले ही, उसके बाद फिर आगे लेके जाते हैं। तो खैर ये जो महल था ये ऐसा प्लेन था कि कोई चिंता नहीं, सब कुछ गार्डन लेक्स हंस और दास दासियां सब साथ में है, कोई पता नहीं चलता था कुछ। तो सती देवी ने कहा कि भक्तों का ऐश्वर्य दिखता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा होता है। तो यहां हम लोग देखते कर्दम मुनि का ऐश्वर्य दिखा नहीं, जब स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को देने आए तो क्या ऐश्वर्य दिखा, कुटिया है बस, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी तो देखिए कर्दम मुनि ने कैसा ऐश्वर्य प्रकट किया अपनी योग शक्ति से। तो उन्होंने पूरा फिर नीचे भी गई तो वहां पर भी उनको दास दासियां बहुत सारी दासियां थी, उनको सब तैयार कर रही थी, और फिर जब वो पूरी तरह तैयार हो गई, सब आभूषण धारण कर लिए, अच्छे वस्त्र धारण कर लिए, तो उस समय उन्होंने अपने पति का स्मरण किया, और जैसे ही पति का स्मरण किया वो सारी दासियां उनको लेकर तुरंत एकदम प्रकट हो गई सामने। किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कपड़े तो उन्होंने पहन लिए लेकिन जब पानी से बाहर आई तो फिर गीले हो गए होंगे सारे नहीं, वो तुरंत प्रकट हो गए, इसीलिए वर्णन है, उन्होंने स्मरण किया सामने पति के सामने। ये योगिक शक्तियां हैं। वैसे कभी कभी किसी के पास कोई थोड़ी सी योगिक शक्ति आ जाती है, वो अपने आप को भगवान घोषित कर देता है, जरा सा हाथ हिला के कुछ सोना प्रकट करता है और लोहार है, भगवान है, भगवान है। ये योगिक शक्तियां हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक योगिक शक्ति ऐसी है कि यहां पर बैठे बैठे अगर आपको दिल्ली के चांदनी चौक में से एक लड्डू चाहिए तो ऐसे हाथ करके दुकान से लड्डू उठाकर ला सकते हैं। तो अगर आप कहे हे भगवान हो गए, चांदनी चौक का लड्डू एकदम यहां पर ला कर दे दिया, कोई भगवान नहीं है, कोई चमत्कार करने से भगवान नहीं बनता। यह बहुत सूक्ष्म हो जाना ये भी एक यौगिक शक्ति है, या बहुत बड़े हो जाना, जैसे हनुमान जी उनको जब छलांग लगानी थी तो इतने विशाल हो गए, बहुत विशाल, लेकिन जब वो रावण की नगरी में पहुंचे तो बड़े छोटे से हो गए, लंकिनी घूम रही थी वो उसके नाखून के समान, वहां घुटन मतलब पैर के पास जो उनका अंगूठा था बस उतने से थे हनुमान जी। तो जब बड़ा होना बड़े हो गए, छोटा होना छोटे, ये सब यौगिक सिद्धियां हैं। इसके कारण हम हनुमान जी को भगवान नहीं कहते, अरे क्या बात है भगवान। लेकिन आजकल लोगों की बुद्धि इतनी कम है कि कोई व्यक्ति जरा सा कुछ प्रकट करता है, जैसे सोना प्रकट कर देता, हाथ हिलाकर सोना प्रकट, वाह भगवान है, अरे क्या भगवान है, इतने सारे पूरी पृथ्वी कितना सारा सोना प्रकट कर रही है, खान है सोने की पूरा, पृथ्वी को भगवान मानना चाहिए, कितना सोना प्रकट कर रही है पृथ्वी। तो इसीलिए कोई सोना प्रकट करता है, कोई राख प्रकट करता है, कोई आपको छूकर आपके बीमारी को दूर कर देता है, हाँ भगवान है भगवान है। ये सारी सिद्धियां हैं, हाँ ऑफकोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि सब बेकार है, लेकिन ये सिद्धियां हैं। तो यहां कर्दम मुनि उन सिद्धियों को प्रकट कर रहे हैं, तो तुरंत वो सामने प्रकट हो गई, और फिर कर्दम मुनि ने जब उनको देखा तो वही सुंदरता थी, बहुत सुंदर, तो कर्दम मुनि भी आकर्षित हो गए उनकी ओर। और फिर ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति भी आकर्षित हो गए, तो उनकी पत्नी ने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया उनके सामने, और फिर वे लोग उस महल में रहे काफी समय तक, और वो कई जगहों पर वर्णन है, कुबेर के स्थान पर, अन्य गंधर्वों के स्थान पर, बहुत स्थानों पर घूमता रहा वो जो विमान बनाया था, विमान नहीं बहुत बड़ा महल, तो घूमता रहा, तो बहुत समय तक, काफी लंबे समय तक उन्होंने उसमें आनंद लिया। और फिर आगे चलकर कर्दम मुनि के द्वारा माता देवहूति को 9 पुत्रियां प्राप्त हुई, 9 पुत्रियां, और ये भी वर्णन किया गया है कि जब उन्होंने प्रदान किया तुरंत अगले दिन पुत्रियां उत्पन्न हो गई, तो 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई। और फिर कर्दम मुनि जाने लगे। कर्दम मुनि का क्या था कि जब संतान हो जाएगी मैं चला जाऊंगा बस। तो कर्दम मुनि जाने लगे। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात एक गृहस्थ जीवन के लिए है कि कर्दम मुनि हालांकि अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे, काफी समय उन्होंने घुमाया, सब कुछ किया, आसक्ति नहीं थी, उद्देश्य को भूले नहीं। ऐसा नहीं था कि पत्नी के साथ संग करते हुए, महल में घूमते हुए, संतान प्रदान करते हुए भूल गए कि अरे मुझे जाना था, भगवान की प्राप्ति करनी थी। नहीं, जैसे ही संतान उत्पन्न हुई तुरंत, अर्थात गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को रहते हुए ये जान लेना चाहिए कि जो कार्य करना है उसको करें, कर्तव्य जो करना है करें, लेकिन उद्देश्य को भूले नहीं। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, इसको भूले नहीं। भोगों में पढ़कर, आनंद में पढ़कर जीवन के उद्देश्य को भूलना नहीं है। जब अवसर मिले तुरंत अनासक्ति को प्रकट करना, तो ये उद्देश्य है। इसलिए ऐसे भोग करते हुए हमें कभी भूल नहीं जाना चाहिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए कि कैसे जब तक आवश्यकता है रहना चाहिए। इवन भक्तों को, भक्त भी एक स्थान पर तब तक रहते हैं जब तक आवश्यकता है, नहीं तो उन्हें दूसरे स्थान पर, जैसे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी आए परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए। 12वां स्कंद में वर्णन आता है कि जब कथा सुना दी उन्होंने, पूरी हो गई, उन्होंने कह दिया परीक्षित को कि ठीक है, हो गया, तुरंत मुड़कर चले गए, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि अरे अरे परीक्षित मेरा शिष्य मरने वाला है, चलो थोड़ा रुक जाऊं, कैसे तक्षक आएगा, कैसे मारेगा, तो जरा देख कर जाऊं, बहुत सारे लोग ऋषि मुनि देख रहे होंगे, मैं भी खड़ा नहीं, बस हो गया, वो चल दी, कोई आसक्ति नहीं कि अरे मैंने इतना उसको सुनाया, देखूं उसके अंदर क्या गुण आए कि नहीं, कैसे वो मृत्यु का सामना करता है, कुछ नहीं, बस घूमे चले गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कैसे परीक्षित क्या कर रहा। तो ये लक्षण है। कर्दम मुनि भी घूम दिए, चल दिए, बस हो गया, कर्तव्य पूरा हुआ, चल देना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए एक जगह। तो गृहस्थ जीवन के सारे नियमों में बहुत से नियम है। पहला नियम एक पत्नी के लिए कि उसको अपने पति के प्रति बहुत समर्पित, फेथफुल होना चाहिए, श्रद्धावान, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए पति में, और पति को भी ज्ञान देना चाहिए पत्नी को। ऐसे बताया जाता है कि पत्नी का जो ऋण है वो पति कैसे चुका सकता है, पति पत्नी का ऋण आध्यात्मिक ज्ञान देकर चुकाता है, बाकी कुछ देकर ऋण नहीं चुकता है। क्या ऋण दे सकते हैं? पत्नी की सेवा, जैसे माता देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की, उसके प्रति क्या दे सकते थे? क्या कुछ धन दे सकते थे, क्या कुछ और? नहीं, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान किए। तो इसीलिए पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो बहुत समर्पित भाव में, श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से, सतीत्व भाव में पति की सेवा करे, और पति का कर्तव्य होता है कि उसकी सेवा के बदले उसके ऋण को चुकाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। इसी प्रकार जब एक शिष्य गुरु की सेवा करता है, तो गुरु की सेवा जब शिष्य करता है तो गुरु क्या प्रदान कर सकता है? क्या उसकी सेवा के बदले वो कुछ धन दे सकता है, कोई पोस्ट दे सकता है कि ठीक है तुमने बहुत अच्छी सेवा की, तुम्हें मंदिर का अध्यक्ष बना देता हूं, तुमने बहुत अच्छी सेवा की, तुम्हें सन्यासी बना देता हूं? नहीं, क्या दे सकता? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता। तो जैसे एक पत्नी समर्पित भाव में पति की सेवा करती है, उसी प्रकार एक शिष्य को अपने गुरु की, वरिष्ठों की, भक्तों की सेवा करनी चाहिए पूर्ण समर्पण से, पूर्ण समर्पित भाव से। देखिए माता देवहूति, जिस समय कर्दम मुनि ने उनको कहा जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो, तुरंत उन्होंने स्वीकार किया, आदेश का पालन, कुछ प्रश्न नहीं किया कि क्या होगा बिंदु सरोवर में स्नान करके, कुछ होने वाला है, इतना मेरा शरीर इतना वीक हो गया, कुछ होगा, क्या होगा, नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो इसी तरह इस भाव में गुरु की सेवा करनी चाहिए कि गुरु ने कहा यह है तो स्वीकार। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया एक क्या, आर न करी हमने आशा, ये केवल बोलने के लिए नहीं है कि हम लोग रोज गाएं गुरु पूजा में जोर जोर से उछलें गुरु मुख पद्म वाक्य और जब गुरु कहें तो बोले नहीं इससे क्या होने वाला है। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया देवहूति दिखलाती। तो देवहूति प्रतिनिधित्व कर रही है एक शिष्य का और कर्दम मुनि गुरु का। तो इसीलिए जैसे हमने बताया कि गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है और गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान देना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्। भगवान ने क्या कहा, वो क्या देते हैं, ज्ञानम्, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो इस तरह से ये कर्तव्य पूरा हुआ तो अब चलने लगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थ जीवन में कि पत्नी सेवा करे लेकिन पति आसक्ति का भाव प्रकट नहीं करे। जैसे कर्दम मुनि आसक्त नहीं हो गए कि ठीक है अब तो छोड़ दो, भक्ति भक्ति बहुत हो गई, तपस्या बहुत हो गई, विवाह के पहले कितनी कड़ी तपस्या की थी, ब्रह्मचारी रहा था, बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब कृष्ण संभाल लेंगे। नहीं, जो उन्होंने सीखा था, जो उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर तपस्या की थी, उसी तपस्या को गृहस्थ जीवन में भी बनाए रखा और जैसे ही वचन पूरा हुआ चल दिया। और उस समय माता देवहूति बहुत सुंदर बातें कहती हैं। माता देवहूति अपने पति से कहती हैं कि मैं आपके साथ रही इतना समय, आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया, लेकिन मैं मूर्ख थी, मैं इन भौतिक भोगों में पड़ गई, मैंने आपसे इन भौतिक भोगों की कामना कर ली, मुझे तो आध्यात्मिक, आप जैसे व्यक्ति जो इतने भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं उनसे भक्ति प्राप्त करनी चाहिए थी, मैं इन चीजों में फंस गई और इसीलिए अभी भी मेरे हृदय में भय है। और आप बहुत सुंदर वो बात कहती हैं, एक बड़ा सुंदर वो श्लोक कहती हैं कि आपकी दिव्य परिस्थिति के परिस्थिति को मैं जान नहीं पाई। यहां हम पढ़ना चाहेंगे उस अनुवाद को, आपकी दिव्य स्थिति से परिचित न होने के कारण ही इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपके साथ रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण उत्पन्न कर लिया है वह ही समस्त भय को दूर कर सकता है क्योंकि मुझे आपके प्रति आकर्षण है। और एक बहुत सुंदर बात वो कहती है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं भोगों में पड़ गई इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद वो कहती है इंद्रिय तृप्ति हेतु, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय बंधन का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए संग करता है तो निश्चय बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है भले ही वे अनजाने में की जाए मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तो बहुत सुंदर बात है कि हम व्यक्ति के आसक्त हो जाते हैं किसी कारण से, तो आसक्ति अच्छी नहीं है इस जगत में, बंधन का कारण है, लेकिन अगर वही आसक्ति किसी भक्त के साथ हो तो वो मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है, क्योंकि आसक्ति भक्त से है और भक्त क्या प्रदान करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान। तो इसीलिए बहुत सुंदर बात कहती हैं कि इस जगत में हमारी आसक्ति है, तो दूसरे शब्दों में वो क्या कह रही हैं कि हमें हमारी जो आसक्ति अभी भौतिक भोगों में है उसको भगवान के प्रति मोड़ना चाहिए, तो वही आसक्ति जो बंधन का कारण है वही आसक्ति मुक्ति का कारण बनेगी। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर उपदेश दिया उन्होंने। आसक्ति है, वही आसक्ति जो हमारे लिए बंधन है, पाप है, दुर्गुण है, उसी को सद्गुण बनाए, उसी को भक्ति बनाए, केवल उस आसक्ति को भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति लगाकर। जितनी हमारी आसक्ति भगवान के भक्तों में बढ़ेगी उतने हमारे भौतिक बंधन से छुटकारा होगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों से आसक्त है, तुकाराम जी की पत्नी कोई भक्ति नहीं करती थी, भगवान को बुरे बुरे शब्द कहती थी, कभी मंदिर नहीं जाती थी, जाती भी थी तो चप्पल लेकर मारने के लिए, यस भगवान को, या गरम गरम दूध पिला देने के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी आसक्ति एक भक्त से थी, अपने पति से बड़ी आसक्त थी वो। देखिए ये जो श्लोक है इसका उदाहरण है तुकाराम जी कि उसकी पत्नी कोई भक्त नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी कृष्ण की भक्ति करने में, लेकिन एक गुण था, आसक्ति थी भगवान के भक्त में, और इसीलिए भगवान ने दर्शन दिए, ऐसा ही नहीं आगे मुक्त भी किया उन्हें। तो ये देखिए कितना सुंदर उदाहरण हमारे लिए है। तो यहां यही माता देवहूति कह रही हैं कि हाँ वैसे आसक्ति बंधन का कारण है, लेकिन अगर वही आसक्ति भक्तों में हो जाए तो मुक्ति का कारण है। तो ऐसी आसक्ति हमें भगवान के भक्तों के प्रति प्रकट करनी चाहिए, ऐसी आसक्ति उत्पन्न करनी चाहिए, जैसे हम सब की आसक्ति शिला प्रभुपाद से है। हमने प्रभुपाद को देखा नहीं है, हम लोग मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सब की आसक्ति है प्रभुपाद से। हम लोग जो प्रभुपाद कहते हैं उसको स्वीकार करते हैं, सेवा करते हैं उनकी, ये आसक्ति हमारी मुक्ति का कारण होगी। तो ऐसी आसक्ति भक्तों से होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। हर एक भक्त को एक दूसरे भक्त से प्रेम होना चाहिए भक्ति के आधार पर, उसके भक्ति उसके गुणों को देखकर, उसकी शारीरिक अवस्था से नहीं, उसके धन से नहीं, उसकी मान प्रतिष्ठा से नहीं, उसकी भक्ति से और भक्तों के गुणों से, भक्ति के गुणों से। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण उपदेश ये अंत में है, इसीलिए हम कह रहे थे ये अध्याय पर एक घंटे में चर्चा नहीं हो सकती, बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है। बाहरी दृष्टि से तो क्या दिख रहा है, बस देवहूति ने कहा कि अरे चलिए थोड़ा सा आनंद लेना है, फिर उन्होंने आनंद लिया, संतान उत्पन्न की, और फिर कर्दमुनि जाने लगे और माता देवहूति ने कहा नहीं नहीं ऐसे मत जाइए इत्यादि, बस अध्याय समाप्त। लेकिन कितने गूढ़ रहस्य इसमें छिपे हुए हैं, प्रभुपाद के तात्पर्यों में उनको प्रकट किया जा रहा। तो माता देवहूति कितना सुंदर ज्ञान ये दे रही है, इसलिए हमारी आसक्ति, और अगर हमें अपनी आसक्ति हटानी है भौतिक चीजों से, भक्तों में आसक्ति लगा देनी चाहिए, फिर बाकी कृपा कृष्ण करेंगे, बाकी चिंता मत कीजिए। जैसे उदाहरण तुकाराम जी की पत्नी, उसने कौन सी भक्ति कर ली, कौन सी चिंता की, लेकिन उसने बस एक आसक्ति दिखलाई भक्त के प्रति। वो नियम था, बिना तुकाराम जी को खिलाए खाती नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले उनको बहुत बुरा भला कहती थी, कभी कभी उनको डांटती थी कि हाय मेरे क्या कर्म है कि किससे मेरा विवाह हो गया, अच्छी भली अपने घर में थी इत्यादि ये वो, लेकिन फिर भी आसक्ति थी, कभी उनको खिलाए बिना खाती नहीं थी। उसको दुख होता था कि मेरे पति, वो जाकर ऊपर पर्वत पर बैठकर जपा करते थे, उनको तो चिंता ही नहीं, उनको खाने पीने की क्या चिंता, वो चले जाते थे ऊपर पर्वत पर बैठकर भगवान का नाम ले रही, ये बिचारी कांटों के रास्ते से होते हुए रोटी लेके जाके उनको खिलाती थी कि नहीं आप खाओ। वो सोचती थी मेरा पति हाँ मूर्ख है, एक काले वाले के पीछे पड़ा हुआ है, मूर्ख है लेकिन फिर भी भूखा बैठा होगा। ये आसक्ति, केवल उनकी सेवा की आसक्ति कि मुझे उनकी सेवा करनी, वो भूखा बैठा होगा मैं जाकर उसको खिलाती हूँ, वो काले वाले ने तो उसका जीवन खराब कर दिया है, मेरा पारिवारिक जीवन ये काले वाले ने खराब किया, पत्नी से आसक्त नहीं है वो, काले वाले से जाकर आसक्त है। तो बड़े दुख था लेकिन फिर भी आसक्ति थी, भूखा देख नहीं सकती थी। ऐसी आसक्ति अगर हमें भक्तों में हो जाए, हम प्रयास करें कि हम भक्तों के लिए भक्ति की सारी सुविधा हम प्रदान करें, उनको कोई कष्ट नहीं हो, ये भाव होना चाहिए कि हमारे होते हुए किसी भक्त को क्यों कष्ट होना चाहिए भक्ति करने के लिए, हम लोग उनकी मदद करेंगे, कितना अच्छा भाव, कितना अच्छा समाज हो जाएगा अगर हम एक दूसरे के सहयोग करने लगें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के। ये बहुत सुंदर श्लोक माता देवहूति कहती हैं कि वही आसक्ति जब साधु पुरुषों से हो तो फिर वो मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। और फिर वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक को कहती हैं, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो हि सः। माता देवहूति कहती है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, कि कहती हैं कि वो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है लेकिन उसका कर्म नेह यत् कर्म धर्माय, धर्म की तरफ नहीं ले जा रहा जिसका कर्म, न विरागाय कल्पते, और ऐसा धर्म का पालन वो कर रहा है जिससे वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। और कैसा वैराग्य? न तीर्थपद सेवाय, अगर उसका वैराग्य उसे भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा की ओर नहीं ले जा रहा, वो वैराग्य बेकार है। अर्थात वो कहती हैं वो कर्म बेकार है, वो कर्म व्यर्थ है अगर वो आपको धर्म की ओर नहीं ले जा रहा, वो धर्म व्यर्थ है अगर वो आपको वैराग्य की ओर नहीं ले जा रहा, और वो वैराग्य व्यर्थ है अगर वो आपको भगवान के भक्तों की सेवा की ओर नहीं ले जा रहा। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के भक्तों की सेवा में नहीं लगा, जीवन अपि मृतो हि सः, जीते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के समान है। देखिए जब हम लोग चर्चा करते हैं कि भागवत कितने सुंदर चीजों को देता है, और बहुत सुंदर बात वो अंतिम श्लोक में भी कहती हैं। इससे पहले उन्होंने कर्दम मुनि से कहा कि आप तो जा रहे हैं, निश्चित मैं प्रसन्न हूँ, बाहरी दृष्टि से प्रसन्न दिख रही थी, अंदर से नहीं थी, लेकिन आपको मुझे निर्भय प्रदान करना है। अभी ये जो पुत्रियां हैं, आपने 9 पुत्रियां दी हैं, इनका विवाह हो जाएगा, ये चली जाएंगी अपने अपने घर पे, मेरा ध्यान कौन रखेगा, तो इसलिए एक पुत्र आपको मुझे प्रदान करना चाहिए। आपने 9 पुत्रियां दी ठीक है, मगर इन सब का विवाह हो जाएगा, ये चली जाएंगी, फिर मेरा कौन ध्यान रखेगा, तो इसलिए एक पुत्र को मैं चाहती हूँ। तो ये उन्होंने मांगा था। अंतिम श्लोक में भी बहुत सुंदर बात वो कहती हैं। वो कहती हैं कि हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी गई हूँ, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रह कर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। देखिए कितनी सुंदर बात है। अंत में वो बता रही है कि भक्तों के साथ रहकर क्या मांगना चाहिए, तो वो कहती है कि मैं भगवान की अलंघ्य माया, अलंघ्य यानी जिसको पार करना कठिन है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि ये जो माया है किसकी है, मम माया दुरत्यया, दुरत्यया मतलब पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन कौन लोग पार कर लेते हैं? हाँ श्लोक बताइए, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। तो जो लोग मुझे समर्पण कर देते हैं, मेरी शरण में आते हैं, भक्तों को समर्पण करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। तो यहां पर वो कह रही कि अलंघ्य माया है, इसको पार नहीं कर सकती, और इसके द्वारा मैं ठगी गई हूं। ठगी गई मतलब धोखा हो गया मेरे साथ। क्या धोखा हो गया? अरे आप जैसे व्यक्ति का संग मिला और मैंने क्या कामना की, थोड़ी बहुत भोग की कामना कर ली, थोड़ा ये कर लिया। तो ये उदाहरण है कि भक्तों के पास जाकर अगर आप कुछ भौतिक कामना कर रहे हैं तो माया आपको ठग रही है। बस एक बार प्रभुपाद थे, बैठे थे, तो उनके पास कोई आए, स्वामी जी आशीर्वाद चाहिए, उनका शत परिवार था, तो स्वामी जी आशीर्वाद चाहिए, तो प्रभुपाद के पास ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, सबका सर शेव किया हुआ, सारे वैरागी साफरण पहने हुए, तो प्रभुपाद ने कहा मेरा आशीर्वाद चाहिए, ये है मेरा आशीर्वाद। मतलब ये आशीर्वाद है, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा अगर मैं आशीर्वाद दूंगा, सर शेव करके बैठना पड़ेगा। उसने कहा नहीं 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 स्वामी जी, ठीक है हम चलते हैं, कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये लोग साधुओं के पास आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, धन का, संपत्ति का, परिवार का, तो प्रभुपाद दिखाते हैं मेरा आशीर्वाद ये है, सारे सर शिव करके बैठे हुए हैं। तो साधुओं के पास यहां दे कहती कि अगर हम साधुओं के पास, भक्तों के पास कोई भौतिक कामना लेकर जाते हैं तो इस तरह है कि माया हमें ठग रही है, माया ने ठग लिया हमें। लेकिन अगर हम वही आसक्ति, अगर हम भक्तों से, जैसे यहां वो कह रही हैं कि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की, यानी भक्तों का संग हमें भवबंधन से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन हमें चाहना तो चाहिए, हमें दिखलाना तो चाहिए कि हमें मुक्ति चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, तब कृपा आएगी। तो इस तरह उन्होंने इस अध्याय में कर्दम मुनि से प्रार्थना की कि एक पुत्र के लिए, और आगे अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कर्दम मुनि ने उनको एक पुत्र प्रदान किया और फिर वैराग्य को पालन किया, वैराग्य का, और फिर आगे भगवान कपिल के द्वारा माता देवहूति को शिक्षाएं। बहुत सुंदर, आगे आने वाले अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कपिल भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि उन शिक्षाओं को, एक एक अध्याय को हम एक घंटे में बोल सकें थोड़ा बहुत, क्योंकि यही अध्याय हमें लग रहा है कि हमने न्याय नहीं किया। इन श्लोकों को ऐसे जल्दी 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 बोल दिया तो न्याय नहीं हुआ ठीक से। इनको पर तो बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों के महत्व का है। एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, देवहूति के द्वारा कहा गया, तो उस पर विस्तार से चर्चा होनी थी, लेकिन क्योंकि हमने प्रण लिया हुआ है कि एक दिन में खत्म करेंगे एक अध्याय, तो इसलिए हमें करना पड़ा। खैर, इस तरह से अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।